نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير دار قرآن 2025 ڈی کیو 2025 آج اس کا پارہ نمبر 21 ہمارے سامنے ہے. آئیے ذرا درود شریف پڑھتے ہیں محبت کے ساتھ. وہ پیارے نبی جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ بات بتائی کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو کسی بھی جگہ اگر اسلام میں کوئی خوبصورتی دیکھ لیں تو بجائے اس کے کہ اس پہ نگیٹو فیلنگ دینے لگیں اچھی دینی چاہیے. اور کیا کہا, جب کوئی اچھی چیز دکھے تو ماشاءاللہ. کل والے پارے میں کیا دو چیزیں پڑھی تھی, اچھی چیز ملے تو الحمدللہ ہی بنعمت ہی تتم الصالحات, غلط چیز ہو تو الحمدللہ علی کل حال. تو جو نعمت ملے آپ کے ہے کہ نہیں ہے, آپ اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں, دعا دے دیں, آپ کی ہو گئی. اکثر بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا, تو خوش ہو کے دعا دیجئے, اور کچھ الٹ شلٹ باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس بات پہ کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا, ہم پارہ نمبر 21 اتلو ما اوحیہ اس کو شروع کریں گے آج. سورہ عنکبوت کی آیت 45 سے 60 ہے. اس میں اس پارے کے شروع میں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراج منیر کیسے تھی, تو میں تو صرف پہلی آیت کے اوپر ہی بات کر کے آپ کو کہہ دوں کہ آپ ہدایت کا وہ چمکتا وہ چراغ تھے کہ جنہوں نے دن میں 5 بار انسانیت کو رب سے باتیں کرنا سکھایا. اب دیکھیے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ میں اپنے سے کسی بڑی ہستی سے بات کروں. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, لوگ بڑا پھرتے ہیں, بھاگتے ہیں بڑے لوگوں کے پیچھے, کوئی ان کو دکھ سنانا چاہ رہا ہوتا ہے, کوئی ان سے مدد کی خواہش رکھتا ہے نا. اب وہ بندے بھی چھوٹے ہیں تو بولنے اور بات کرنے والا بھی چھوٹا ہوتا ہے, لیکن جب ایک بندے کی یہ ارج یہ خواہش اتنی بڑی ہستی کے ساتھ بات کر کے پوری ہو جائے جس کو اللہ کہتے ہیں, تو ایسے لگتا ہے اس کے پاس ضرورت نہیں کسی کی. اللہ کے ساتھ بات کرنا نبی نے سکھایا. لوگ بتوں کے ساتھ باتیں کر کے بھی وہ نہیں پا لیتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر کے ایک بندہ مومن کو مل جاتا ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے اسے پیچھے دیکھا تھا کہ پہلی وحی آئی اور اس پہ جو کیفیت ہوئی وہ بڑی انیوژل تھی, اور حضرت خدیجہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لاتی ہیں, ورقہ بن نوفل نام کے اپنے چچیرے بھائی کے پاس لے جاتی ہیں. وہ کمپیریٹیو ریلیجن کے ناطے سے جان رہے تھے کہ اب وہ وقت قریب ہے جب کہ وہ شخص آ جائے گا جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں, اور بہرحال اس نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوا جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلا دے گی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. لیکن اس کی زندگی میں یہ وقت نہیں آیا, وہ پہلے سے فوت ہو گیا, یعنی موقع نہ ملا. اب کیا ہوا پہلی وحی کے بعد, یعنی آج کا ٹاپک کیا ہے محمد عربی کا, پہلی وحی کے بعد آپ کو فرشتے کا انتظار رہنے لگا, اسی فرشتے کا جس کو آپ نے دیکھا تھا, جسے ورقہ نے ناموس موسیٰ کہا تھا اور جسے خدیجہ نے بالیقین فرشتہ بتایا تھا. آپ انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, لیکن جبرائیل ہی نہ آئے اور آپ پر کوئی وحی نہ آئی. آپ اس کو کیسے فیل کریں؟ یہ تو نبوت کی باتیں ہیں نا, ہم تو نہیں اس کے اسرار و رموز کو بری طرح جان سکتے. آپ میں سے کبھی کسی کو اپنا وہ کوئی ایکسپیرینس یاد ہے, کبھی آپ نے کوئی ایک چیز سن لی کہیں سے, کوئی آ گیا میسج میں, واٹس ایپ میں, کوئی کلپ سن لیا جبکہ دل کو لگ گیا. کبھی کبھی چھوٹی سی بات بھی دل کو لگ جاتی ہے. آپ کو نہیں پتا بولنے والا کون ہے, بھیجا کس نے ہے کہ اس سے پوچھ لیں, بس کہیں سے ایسے ہی کہنا چاہیے کہ آپ کے باکس میں آ گیا کوئی کلپ تھا اور آپ نے سن لیا. اب آپ کو خود خود لگ جاتی ہے یہ کون ہے, ان کی اور آڈیوز کہاں ہوں گی, ان سے کیسے رابطہ کیا جائے, یا کوئی ایک بائٹ چکھا دے آپ کو کھانے کی اور یہ نہ بتاؤ کہ یہ ملنی کہاں سے, تو تڑپ لگ جاتی نا. کوئی ایک جوڑے کی جھلک دکھا گیا آپ کو, اب کہاں سے لینا ہے. وہ جو خود 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 ہوتی ہے نا, अल्लाह के नबी सल्लम को एक अजीब घबराहट होने लगी। बाज़ रिवायात में तो यहाँ तक आता है कि आपने फरमाया कि मुझे लगता था कि मैं ऊपर पहाड़ पे जाके खुद को नीचे गिरा दूँ। फ्रस्ट्रेशन, दिल में एक तूफान था, और साथ ही एक तड़प लग गई थी कि मैं अब लोगों को किस तरह इस चीज़ की दावत दूँ। जिब्राइल क्यों नहीं आ रहे, जिब्राइल क्यों मिलना छोड़ दिया, अब कोई पैगाम क्यों नहीं ला रहे। जैसे वो एक मोहब्बत परी हस्ती इंसान से दूर हो तो इंसान उसको मिस करता है। अब बहुत फिक्रमंद हुए, दमकता हुआ चेहरा बुझ गया और हंसता हुआ दिल रोने लगा। बीवी खदीजा भी अपने शौहर को देखकर बिल्कुल इसी तरह से महसूस करने लगी। फिक्रमंद हुई, गम में घुलने लगी, लेकिन बड़े मजबूत असाब की औरत थी, जब्त से काम लिया, दिल का गम चेहरे पे नहीं आने दिया। और जहां देखा अल्लाह के नबी मगमूम है, तो फौरन एक अच्छी बीवी बनते हुए तसल्लियां दी। आज के पारे में भी आपने एक बीवी का रूप पढ़ना है इंशाल्लाह, कि वो अपने शौहर के लिए सुकून का जरिया होती है और शौहर बीवी के लिए होता है। हर मुमकिन कोशिश की कि अल्लाह के नबी का दिल बहला जाए। खैर, आप दोबारा गारे हीरा में जाने लगे, दिन रात वहीं आप रहते, इबादत करते, रब से कहते, ऐ रब तूने मुझे नबी बनाया था, फिर अब ये क्या हो गया। यानी वो जिसको उर्दू में कहते हैं ना, गम से सीना जल रहा था, एक आग थी जो अंदर सुलग रही थी, एक शोला था जो दहक रहा था। कभी बेखुद होकर आप घाटियों में फिरने लगते, कभी पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाते और चाहते कि मैं कूद कर जान दे दूं। इतने में फिर दोबारा अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, और ये वो वक्त था कि जब आपने जिब्राइल को उनकी असली शक्ल में देखा था, और उस वक्त सिर्फ जिब्राइल के दो पर खुले थे, और आपको ऐसे लग रहा था कि पूरे उफक पे, यानी पूरा राइजन होता है ना, इस पूरे पे जिब्राइल है। और आप बताए कि जिब्राइल के कितने पर हैं? 600 पर हैं। जिब्राइल बड़े खूबसूरत है, अभी लेक्चर दिया है ये आपके पिछला जो भी सऊदी ट्रिप था ना नवंबर में, तो ईमान बिल मलाइका पढ़ाया है यूमिनोन बिल गैब सीरीज में, और मुझे लगता है कि ये जो जिब्राइल वाला लेक्चर था ये दम्माम से आया था, लोग रो रहे थे। आपने कभी सोचा भी नहीं जिब्राइल कैसे, उनके परों में से याकूत चढ़ते हैं, ये जो आप छोटा सा एक मोती डाल के खुश हो जाते हैं ना अंगूठी में, उनमें से रियल पर्ल्स गिरते हैं, गोल्डन रंग। अब ये तो ईमान बिल गईब है ना, हम देख तो नहीं सकते ना, लेकिन दो दफ्तर अल्लाह के नबी की नबवी जिंदगी में आपको जिब्राइल दिखे थे, और जब वो आए तो उन्होंने आपको तसल्ली दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वाकई अल्लाह के नबी हैं, इससे आपको सुकून हो जाता, फिर आप वापस चले जाते। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोबारा फिर वही कैफियत होती, यानी वो फील करने लगे, मिस करने लगे, फिर पहाड़ी पर चढ़ जाते, फिर जिब्राइल आते, कुछ इस तरह की कैफियत थी कि ये अल्लाह ताला असल में ना आपके जहन को तैयार कर रहा था, आपके दिल पर ये एक गुबार था। और ये सब भी आज होता है, फिर कुरान समझ आता है, जो तासीर कुरान की आज है ना, आप अल्लाह के नबियों के साथ और स्पेशली जाहिर है कि अल्लाह के नबी सल्लम के साथ, उसको इनफिनिट के साथ मल्टीप्लाई कर लें। हमारे तो ईमान भी ऐसे नहीं है, यानी आज अगर हम अपने आप को देखें तो हम क्या हैं, हमारी कोई औकात है? सच बताइए, ये सिर्फ अल्लाह का फजल होता है कि अल्लाह ताला बंदे से कोई अच्छा काम ले ले या उससे कोई काम अच्छा दे दे। अल्लाह बंदे के 100 ऐब छुपाता है, फिर उससे कोई एक नेकी करवाता है, ताकि लोगों को लग जाता है कि ये बड़ा नेक है। बिल्कुल इसी तरह से आप और मैं अपने ऊपर तो कयास कर लें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत थी मैं नहीं कह सकती क्या थी, लेकिन सिर्फ एक अंदाजा देने के लिए कि आपके दिल में कितनी तड़प पैदा हो गई थी कि मैं और सुनो एक रब इसमें रब्बी का के बाद आगे क्या पढ़ेंगे, और क्या होगा, ये वही क्यों रुक गई है, शायद रब ने छोड़ दिया। यानी वो जैसे एक चुपते हुए नश्तर थे। और इन्हीं दिनों में फिर एक दफा जब आप कहीं से गुजर रहे थे, ऊपर आवाज आई, जब आपने देखा तो वही फरिश्ता जो गारे हिरा में आया था वो फिजा में एक कुर्सी पे बैठा हुआ था। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लम ने जब देखा तो आप लरसने लगे, कांपने लगे, और आपको उस वक्त महसूस हुआ था कि मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इनको देख सकूं। ये बहुत सारे लोग कहते हैं ना फरिश्तों को देखना, 8वें पारे में भी पढ़ा है ना, तो अल्लाह कहते हैं कि फरिश्ता नजर आ गया तो तुम देख सकोगे, तुम तो बेहोश हो जाओगे। इसीलिए जब आप मौत के फरिश्ते को इंसान देखते हैं जिसकी मौत का वक्त करीब है, तो वो बोल नहीं सकता, मबहूत हो जाता है। तो बहरहाल ये वो वक्त था, ये वो कैफियत थी कि अल्लाह के दर से सल्लम बेचैन थे, कांप रहे थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद दूसरी वही या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुछ कहते हैं कि मुद्दस्सिर और मुजम्मिल आगे पीछे उतरी, यानी बस ये कह लीजिए कि फिर वही का सिलसिला शुरू हो गया। रात को अल्लाह के सामने खड़े हो जाए बंदा, तो दिन में बंदों के सामने खड़ा होना बड़ा आसान होता है, और रात को रब से इंस्ट्रक्शंस ले लो, दिन में बंदों को दे दो। अल्लाह ने ये एक खास तरतीब रखी है, अगर हम अल्लाह से बात नहीं करेंगे ना तो बंदों से भी नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार है ना वो बड़ा खूबसूरत है, और आपके अंदर एक अजीब सी कह लीजिए कि अल्लाह ताला ने रूहानियत शुरू से भर दी थी, लेकिन जब कुरान आया कह लीजिए कि आपके घर में आपको इस्लाम की समझ आ रही है और आप और ला रहे, तो सोने पे सुहागा हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आज भी कुछ लोग पैदाइशी तौर पे फितरत के करीब होते हैं, आपके अपने घरों में होंगे, 6 मामू हैं, 4 मामू हैं, उनमें एक वैसे ही बड़े शरीफ हैं, कोई दूसरे हैं जो वो कुरान पढ़ के ज्यादा नेक हुए हैं, होते हैं ना, अपने अपने बच्चों में भी देखेंगे। कुछ लोगों में ना फितरी तौर पे मिलान होता है नेकी का, मिलान में रुझान, इंक्लाइनेशन, कुछ कुरान पढ़ के बदलते हैं, कुछ बगैर पढ़े भी बदल जाते हैं, और कुछ कुरान पढ़ के भी नहीं बदलते। अपने लिए हम ये दुआ करें कि अल्लाह तू हमें इस कुरान के पढ़ने के बाद एक मुख्तलिफ इंसान बनाना, ऐसा ना हो कि हम कुरान पढ़े ना पढ़े बराबर हों, और साथ ही साथ एक ये भी दुआ कर लीजिए कि मालिक तू मेरे अंदर अगर कोई खैर है ना, कोई खैर है, उसको बाहर ले आ, क्योंकि कुरान जो है ना इसका काम बिल्कुल वही होता है जैसे अंदर बादाम है, छिलका सख्त है, फायदा ही नहीं होता। हम अपनी अना के खोल में छुपे होते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ी नेक चीज और हस्ती और पता नहीं क्या क्या समझ रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला हमें अंदर से तोड़ता है। जैसे आप देखिए, यहाँ आप पहाड़ों को टूटता देखते होंगे ना, मक्का के हरम के इर्द गिर्द अक्सर ही बिल्डिंग्स बनती हैं, अब जब इन्होंने पहाड़ को तोड़ना है तो बिलफर्ज इधर ही देख लीजिए कि जद्दा रोड है, यहाँ कोई नई बिल्डिंग बनेगी और उसके लिए पहाड़ तोड़ेंगे। अब वो एक होता है डायनामाइट मारते हैं, एक्सप्लोजन होता है, पहाड़ के जो पत्थर हैं वो टूट टूट के बाहर गिरते हैं, अब क्या होगा, तो इर्द गिर्द की सारी बिल्डिंगों के शीशे टूट जाएंगे। अब नई टेक्निक से तोड़ते हैं लोग, वो कहते हैं एम्प्लोय, वो ऐसे तरीके से करते हैं कि वो पहाड़ जब टूटता है ना तो उसके जो पत्थर या बजरी तो वो अंदर ऐसे अंदर अंदर गिरती है, और वो अंदर से फिर शक्कर से लगा के ना तो उसको निकाल देते हैं। कुरान आपके अंदर से एक्सप्लोजन नहीं करता, एम्प्लोजन करता है, बंदा पहले अंदर से टूटता है और फिर बाहर से टूटता है। और आप अल्लाह से ये दुआ किया करें कि मुझे इस कुरान को पढ़ने के बाद वो मिल जाए जिसको पाने के लिए मैं यहाँ आती हूँ, और ये कुरान इंशाल्लाह आपको वो सब दे देगा जो इसके अंदर छुपा हुआ है।